ये तो कबूतर का फुजला लगता है। जनाब, हम कैनूस को नहीं ढूंढ सके, पता नहीं कहां जाकर छुपा बैठा है। बैग में मौजूद सभी ट्रेवलर चेक नकली हैं। कातिल का नाम शहाब यावरी है, वो एक कैद याफ्ता नामी मुजरिम है। जनाब, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसे ढूंढ निकालेंगे। उनके सभी ठिकानों और वाकिफकारों को खंगाल डाला, उन सब पर नजर है। फिलहाल हम इतना ही कुछ कर सके हैं।
उस लड़की ने अहमद रजा को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने काम पर पछतावा हुआ और वो पछतावे के बाद पलटी तो उसे चाकू से मार डाला गया।
अभी अंधेरा होने वाला है जनाब, चलिए चलते हैं।
तुम जाओ, मुझे खामोशी की जरूरत है। वो कहीं जाकर छुपा बैठा है और मैं घर जाकर मीठी नींद सो जाऊं। दिन के उजाले में किसी के पेट में चाकू मारा जाता है और मारने वाला भाग खड़ा होता है और हम चले जाए। वो भाग खड़ा हुआ है, हमें उसको ढूंढना ही होगा किसी भी हालत में। तुम जाओ।
जी जनाब, अगर आप यहां रुकेंगे तो मैं भी रुकूंगा।
जाओ मुश्तबा, जाओ।
खड़ा रहूं?
क्या कर रहे हो मुश्तबा?
जनाब, इस गोदाम के कबूतरों का फुजला मेरे जूते में चिपक गया है।
ये तो कबूतर का फुजला लगता है।
कबूतर का फुजला?
मैं
गोदाम तहखाना, तहखाना।
ना तो यहाँ है और ना ही अपने घर में, ये उसके ससुर के घर का पता है।
तुम खड़े क्यों हो?
सब किया धरा चौपट हो गया। अपना लंबा मुंह खोलोगे और ये बताओगे कि नहीं सोना कहां है? लो ये रही मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज, अब मुंह खोलो।
आधा आधा ठीक है।
पानी जब सर से ऊपर उठ जाता है तो यही होता है। मेंढक अब तो बोलो।
आग के बीच में, वहीं पर जहां बेजात कियान को मारा था, उसी तहखाने के अंदर। क्या जगह की कमी थी? तुम्हारे जरिए कत्ल किए जाने के बाद पुलिस ने वहां घेराबंदी कर रखी है, वहां जाके सोना कैसे निकाल सकते हैं? असल में तुम्हारे मामू को वहां के बारे में पता कैसे था?
ये बताओ क्या तुम वाकई में ये सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो? तुम ये सोचते थे कि तुम्हें मालूम होगा कि वहां पुलिस मौजूद होगी और मुझे नहीं? क्यों? मुझे बचपन से हमेशा शौक था कि लोगों के बारे में जानूं कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी मां के बारे में, अपने मामू के बारे में। हमारे खानदान में तो सब लोग इस चक्कर में रहा करते थे कि बस पैसा हासिल करो और पैसा ही सब कुछ है। अगर मेरे डैड ने पैसों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह सिर्फ इस खातिर था कि वो एक दिवालियाशुदा खान थे। अगर मैं ना समझ सका तो उसकी वजह यह थी,
मेरी मां नहीं चाहती थी कि मैं समझ सकूं।
वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं उनकी मुट्ठी में रहूं और उनको कहता रहूं बहुत अच्छा। मेरी मां ये जानती थी कि मैं अपने बाप को बहुत चाहता हूं। मुझे ऐसा परवान चढ़ाया मेरे अंदर अपनी खुद एतमादी ना रहे। खुद एतमादी का मतलब जानते हो क्या होता है? सोगवारी की बज में गाने गाया करता था, शादी ब्याह में शेर पड़ा करता, वो भी हुजनिया हुआ करता था ताकि दूसरों की नजरों में रहूं, मतलब ये कि हर तरह से सामने रहूं। मेरी तरबियत ये कहती है कि पैसों के लिहाज से नापा तोला जाए। अगर मेरी बीवी ने मेरा लिहाज नहीं रखा तो इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं था। अगर मेरी मां ने मुझे कोई अहमियत नहीं दी तो सिर्फ इस वजह से कि वो नहीं चाहती थी कि मेरे पास पैसा हो। अगर समसामी मेरा मजाक उड़ाता था तो इस वजह से कि मैं अपनी मां के टुकड़ों पर पलता था। नहीं नहीं, ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं उस तहखाने में जरूर जाऊंगा, चाहे इसे खुदकुशी का नाम क्यों ना दिया जाए। तुम मेरे साथ आओगे कि नहीं?
नहीं। गलती पर हो, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं।
सलाम हाशिम खान।
कहाँ हो जनाब वली, हमने अकेले ही काटा, सिला और दूल्हा दुल्हन को जोड़ा भी पहना दिया।
अभी हमारे पास दूल्हा भी है और
दुल्हन भी है, भाई बहन से सुलह और दोस्ती भी हो गई। कहाँ हो आप?
हाशिम खान, हाशिम खान पूरे का कत्ल हो गया है।
या फातिमा जहरा, या फातिमा जहरा,
उन्हें कत्ल
हो गए।
क्या हुआ?
किसी ने मार दिया।
फोन मुझे दो।
किसी ने मार दिया।
फोन मुझे दो।
मेरी बच्ची को।
हेलो जनाब अली, जनाब अली आप क्या कह रहे हैं? जनाब अली,
फिर तुमने मुश्किल खड़ी कर दी। लाओ बाली कहीं की। मरोगी। खुदाया खुदाया, वाकई में मर जाओगी, इस कदर मुश्किल खड़ी करती हो। असल में गलत करोगी जो मरोगी। क्या इतना आसान है? जब से तुमको जानती हूँ हमेशा परेशान करती आई हो, बस परेशान। अगर तुम्हारे बाप ने तुमको मारा होता। पुणे 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 वापस आ जाओ, पुणे वापस आ जाओ। पुणे नहीं, पुणे में दुल्हन बनने जा रही हूँ। पुणे मेरी कोई बहन नहीं है। पुणे लौट आओ, पुणे लौट आओ।
सलाम जनाब मोहसिन।
सलाम जनाब कंदी।
खुदा बख्श दे तुम्हारे बाबा को, खुदा से कुछ छुपा नहीं है, तुमसे भी कुछ छुपना नहीं चाहिए। तुम्हारे वालिद अपने इंतकाल से 2-3 दिन पहले इसकी मरम्मत के लिए आए थे मेरे सोने की दुकान पर। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी माँ को खबर होगी, लेकिन देखा जब कोई नहीं आया इसको लेने तो मैं समझ गया किसी को मालूम नहीं होगा, इसीलिए ये मेरी दुकान पे पड़ा रहा।
लेकिन मोहसिन मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपने बाबा की फातिहा खाने में लोगों को हराम खाना नहीं खिलाया है। फातिहा खाने का पैसा हलाल का है, जायज है। मैंने वो हार नहीं चुराया है। मैंने अपने बाबा की रूह को नहीं तड़पाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अपनी माँ को मेरा सलाम कह देना।
सलाम। दिन में इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो?
तुमसे बात कर रही हूं।
बताओ किसका पेट भरा है किसका खाली है?
जनाब क्या मैं आ जाऊं? मैं आ जाऊं जनाब? जनाब 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 मैं भी जनाब।
क्या हम दो आदमी ठीक नहीं थे? क्या सामान ज्यादा है?
वो गोदाम है, जब तक सामान बाहर निकालो दरवाजे पर रखो, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। ये रही चाबी, पकड़ो।
किस काम का? ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। आप लौट आए मालिक? इसकी जरूरत नहीं है, काम खत्म होने पर।
काम खत्म हो चुका है,
सामान गाड़ी में रख दूं फिर ले लूंगा।
लो पकड़ो, चलते बनो।
जाओ,
शाबाश। हाँ, मुझे पसंद आए तुम। उस बेचारे मजदूर को अंदर भेजा ताकि तुम पता चला सको कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं, इधर उधर पुलिस है या नहीं। वाह वाह, कोई खबर नहीं है, सब अमनो अमान है। इधर आने दो इसे। अब जबकि मैं पूरी तरह गंदगी और हराजत में डूब गया हूँ, किसी तरह तो वसूल होना चाहिए। 8 अरब कमी पूरी कर सकता है। इधर सरकाओ, इधर सरकाओ से।
एम्बुलेंस। ये अपनी पिस्तौल से जख्मी हुआ है, इसकी देखभाल करो। इसको बोलने की हालत में होना चाहिए। नहले पे दहला। सोना कहाँ है? हाँ,
कौन सा सोना?
शाइस्ता कहाँ है? परवेज शाइस्ता कहाँ है?
तुमको सब पता था। इस पूरी मुद्दत में तुमको ये खबर थी कि परवेज हम सबके साथ खिलवाड़ कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहां तक बताया?
क्यानोश सभा तक।
तकरीबन 5 महीने पहले क्यानोश सभा, एक आदमी के साथ, मेरा ख्याल है वो उसका मामू था, मेरे भतीजे की मार्फत यहां मेरे पास आए थे और मुझसे उनका सवाल दिवालिया हो जाने और उसके बाद इस सिलसिले में कानूनी राय हासिल करने के बारे में था। वो ये जानना चाहते थे कि अगर कोई वकील तामीराती प्रोजेक्ट में अमानत में खयानत का इर्तकाब करता है तो मुवक्किल पर अदालती जुर्म नाफिज होता है या नहीं, या ये कि उस नुमाइंदे का मुवक्किल उस प्रोजेक्ट को जारी रखने पर मजबूर होता है या नहीं। मैंने भी कहा कि इस बात के मद्देनजर कि मुवक्किल का दिवालिया निकल चुका है तो प्रोजेक्ट का जारी रखना जरूरी नहीं है।
क्योंकि मेरा दिवाला निकल चुका है इसलिए मजबूर नहीं हूँ। ये तुम्हें किसने बताया? क्या ऐसा नहीं है? क्यों नहीं, ऐसे ही है। लेकिन मैंने पूछा किसने कहा? तुमने ही कहा होगा।
मैंने कहा मगर अदालत मुवक्किल का असासा कर्जा वसूल करने वालों के हक में नीलाम करेगी।
आपने 400 मिलियन कर्ज लिया है, 400 मिलियन फालतू चीज है।
तो ये कर्ज उसने खुद ही लिया था क्योंकि तुमने ये कानून उसको बता दिया था, क्योंकि वो ये जानता था कि कानून उसकी मिल्कियत को जब्त कर लेगा। उसने सोचा कि क्यों ना 400 मिलियन और भी जेब में डाल लिए जाएं। तो तुमने अपने ऑफिस के कागजात पर ये 400 मिलियन का कर्ज लिया। मैं लेना चाहता था,
क्या मैंने कोई गलती की?
शायस्ता की जमीन की बाबत जब यह मालूम हुआ कि वो वक्फ की है तब उसने शायस्ता के सामने यह तजवीज रखी।
किसने? मैंने।
क्यानोश, क्यानोश सभा।
सबसे पहले यह खेल कहां से शुरू हुआ?
जब पहला धोखा कियानुष के मामू को जमीन की बाबत हुआ, बस वहीं से खेल शुरू हो गया। एक वक्फ की हुई जमीन शाइस्ता को बेच दी गई थी। उस जमीन की कीमत उसके पूरे सरमाए के बराबर थी। शाइस्ता ने घुटने टेक दिए थे। कियानुष ने शाइस्ता को बताया था कि बस बचने का अब एक ही रास्ता है कि कोई कुर्बानी का बकरा ढूंढा जाए।
अहमद रजा बाबाई भी तुम लोगों के बिल्कुल करीब था और तुम लोगों ने भी उसे कुर्बान गाह की तरफ धकेल दिया। तुम्हारा मामू भी अपनी बीवी के साथ जर्मनी में था अपनी बीवी के इलाज के लिए। पर्दे के पीछे की कमान तुमने संभाल रखी थी। इब्तदाई दिनों से ही जब से ये खेल शुरू हुआ था तुमको इत्मीनान था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम अपने मामू को भी फंसा दोगे। तुम्हारे हाथ से बाजी कब और कैसे निकली?
शाइस्ता और कियानुष ने सारा दारोमदार इस बात पर लगा रखा था कि अहमद रजा को 500 मिलियन देकर मुल्क से बाहर भेज देंगे ताकि वो हमेशा के लिए मुलजिम बना रहे और ये लोग बाकी की दौलत पर ऐश करते रहें। एक रात अहमद रजा बाबाई को पब्लिक बूथ से फोन किया गया। ठीक उसी रात जब हम लोग पैसा लेकर अहमद रजा के पास जाने वाले थे कि उसको शाइस्ता के खेल में शामिल किया जा सके, लेकिन उस रात एक नर्स ने अहमद रजा का फोन उठाकर जवाब दिया। हम लोग 500 मिलियन रुपयों से भरा बैग, अहमद रजा का पासपोर्ट और टिकट, ये सब लेकर अस्पताल में पहुंचे।
अभी 10 मिनट नहीं हुआ था कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और पासपोर्ट और टिकट लेकर चला गया।
मगर अहमद रजा ने नहीं माना, इसलिए तुम लोगों से वहीं से उठाकर ले गए और उस पोल्ट्री फार्म में जाकर छुपा दिया।
शाइस्ता को कभी ये बात पता ही नहीं चल सकी कि अहमद रजा ने पेशकश ठुकरा दी है, यानी कि अनुज ने शाइस्ता के कान तक ये बात पहुंचने ही नहीं दी। उस रात की अनुज पोल्ट्री फार्म आने वाला था। अहमद रजा ने भी फरजीन की गफलत और नींद की वजह से मौका का फायदा उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश की और बाहर निकल आया था, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसका हाथ वहां नस्ब फानूस पर लग गया और फानूस पोल्ट्री फार्म के दानों के बीच में गिर गया और फिर वहां एक भयानक आग लग गई।
आग! कोई आकर मदद करे! आग!
अहमद रजा,
अहमद रजा को गाड़ी से कुचल दिया।
कियानुष अहमद रजा के सर पर खड़ा था। अहमद रजा खून में लथपथ पड़ा था, हर जगह आग लगी थी। वो ड्राइवर जो पोल्ट्री फार्म के लिए जानवरों का दाना लाता था।
तुम्हारी हालत बात करने लायक है?
मैं उस ड्राइवर और दूसरे लोगों का ध्यान बटाने में लग गया ताकि कियानुष अहमद रजा को वहां मौजूद सूखे कुएं के अंदर डाल दे, ताकि जब वहां सन्नाटा हो जाए तो वहां से अहमद रजा को निकालकर कहीं खपा दिया जाए।
मुझे सिगरेट चाहिए।
फरजीन सूखे हुए कुएं की तरफ आ रहा था। वो सोच रहा था कि अहमद रजा आग में फंस गया है। कियानुष जो कि नहीं चाहता था कि फरजीन उसको देखे, जाकर छुप गया। मैंने फरजीन को पकड़ा।
वो जल रहा है, आग!
सिगरेट चाहिए।
लेकिन पता नहीं चला कि कब वो चरवाहा सूखे हुए कुएं के पास पहुंच गया।
और अहमद रजा कोमा में चला गया। उसी मौके पर शाइस्ता को यह समझ में आया कि तुमने झूठ बोला था और तुमने उन पैसों को जिसे अहमद रजा ने कबूल नहीं किया था अपनी जेब में डाल लिया, जबकि उन पैसों के बारे में तो तुमने कह दिया था कि अहमद रजा ने ले लिए और वो चला गया और अब सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है।
तुमको डर था कि कहीं अहमद रजा को होश ना आ जाए, इसलिए तुमने उसको मारने के लिए फ्रामर्जी को भेजा, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो तुम डर गए कि कहीं पुलिस फ्रामर्जी तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसको मार डाला।
मैं नहीं, कियानुष ने, कियानुष के लोगों ने उसका कत्ल किया।
मुझे सिगरेट चाहिए, सिगरेट दो मुझे।
शाइस्ता के बेटे के खिलाफ क्यों साजिश रची गई और फरामर्जी के फोन से बाबा का नंबर क्यों मिलाया गया और बाबा को इस मामले में क्यों घसीटा गया,
ये बात मैं भी नहीं समझ पाया।
इस वजह से कि उस खत को जो शाइस्ता को लिखने को मजबूर किया था जायज करार दिया जाए, ताकि पुलिस ये ना कह सके कि खत क्यों लिखा और भाग गया, क्योंकि ये चाहता था कि पुलिस ये समझे कि शाइस्ता ने यह खत बाबा को छुड़ाने के लिए लिखा है। ये खत उस पोल्ट्री फार्म में खुजिस्ता के दोस्तों को ले जाना, बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ पूना के पास याकूत को भेजना और उस गुंडे मवाली को अहमद रजा की बीवी के पास भेजना और उस गोदाम में उसका कत्ल, ये सब इसलिए था कि शाइस्ता को असली मुलजिम करार दिया जाए और उसके बाद शाइस्ता को भी रास्ते से हटा दिया जाए ताकि पुलिस का ध्यान भी किसी और पर ना जाए।
समझामी कानून का जानकार है, तुमको मालूम था कि वो इस खत को लाकर पुलिस को दे देगा।
कियानुष ने बताया कि शाइस्ता किसी भी वक्त मुमकिन है अपने बेटे की वजह से पुलिस के पास जा सकता है। सिर्फ एक वजह से शाइस्ता का कत्ल नहीं किया, क्योंकि सोना कहाँ है उसको नहीं मालूम था।
शादी की रात उसको अगवा कर लिया।
शाइस्ता ये सोच रहा था कि इसके अगवा के पीछे कावे का हाथ है। ये नफसियाती खेल कयानुष ने शुरू किया ताकि सोने की जगह का पता चल सके, क्योंकि उसको मालूम था कि शाइस्ता की कमजोरी है रोया।
लेकिन उसने सोने की जगह के बारे में झूठ बोला, क्यों?
शाइस्ता को उस तहखाने के बारे में कैसे पता था?
तहखाना दरअसल एक खानदानी तहखाना है, ना तो उसका कोई मालिक है और ना ही उसके कोई कागजात या सनद है। नस्ल दर नस्ल ये मिल्कियत मजहूल रही है।
सिगरेट दो, मुझे सिगरेट दो, सिगरेट।
शाइस्ता ने तुमको और पर्दा याकूत को उस तहखाने में भेजकर कत्लगाह की तरफ धकेल दिया। जब उसने देखा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसने तुमको भी अपने साथ घसीट लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कदर अक्लमंद था कि अपने उन आखिरी लम्हात में वो समझ गया कि सब खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है। अब ये बताओ कि सोने की जगह कौन जानता है?
नहीं जानता, नहीं जानता। बस मैंने एक गलती की है कि अनुज का नाम मेरे मुंह से निकल गया। कि अनुज का फासला गावे का तुम्हारी बेटी के साथ बस एक बालिश का है।
शाइस्ता ने हम लोगों को कत्लगाह की तरफ भेज दिया।
हाँ, यहाँ तक कि वो पहले से ही जानता था कि कियानुष की नियत में खोट है, इसलिए उस पर भी भरोसा नहीं किया। किस पर? फिर वो किस पर भरोसा कर सकता था? इसका मतलब क्या इस खेल में कोई और भी शरीक है, कोई दूसरा पार्टनर, कोई और जिसको इसकी खबर हो?
नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम।
शाइस्ता को किसी हद तक तुम पर भरोसा था। तुम पर उसको भरोसा था, इसलिए उसने अपना 8 अरब तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने भी सोने की मार्केट में उसको सोने की ईंटों में तब्दील करवा लिया। लेकिन जब अहमद रजा के मामले में तुम्हारा झूठ सामने आया तो तुम पर से उसका भरोसा उठ गया। शाइस्ता का भरोसा सब पर से उठ गया था। सबके अलावा हर जगह उसको अदम एतमाद की फिजा नजर आ रही थी। उसने हर तरफ से धोखा खाया था। शाइस्ता जैसा एक चालबाज आदमी जो हर घड़ी खुद को चालबाजियों के बीच घिरा हुआ पाता है, उसको एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिस पर भरोसा कर सके। समसामी और बाबा के इन सब बातों से कहीं ज्यादा ईमानदार हैं कि इस मामले में उनको मुलव्वस करे शाइस्ता और कहे कि सारी गंदगी उसकी फैलाई हुई है। फिर वो किस पर भरोसा कर सकता था, किसको कह सकता था? वो कौन था कि अगर शाइस्ता किसी मुसीबत में पड़ता तो उसकी बेटी का ख्याल रख सकता, उसकी देखभाल कर सकता, वो पूरा 8 अरब उसकी बेटी के लिए संभाल कर रख सकता? तुम्हारे मामू के आसपास ज्यादा लोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। तुम्हारे समसामी और उसके बेटे और उसकी बेटी को अगर अलग कर दें तो फिर ऐसा कौन हो सकता है? हाँ, बस एक रह जाता है, और वो है तुम्हारी माँ। फ्लोर, क्यों ठीक है? एक डॉक्टर भेजो यहाँ।
چه آرام